आपको याद होगा कि हम इन दिनों में प्रेरित काम की सीरीज में चल रहे हैं। आशा है कि जल्दी हम इसको समाप्त करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, इस साल कोरोना के आशीष के कारण में प्रेरित काम की पुस्तक को पूरा खत्म करने पा रहे हैं। सो आज हम 22 अध्याय में हैं। सो पिछली बार हमने 21 अध्याय तक हम गए थे, आज 22 अध्याय प्रेरित काम उसका 22 अध्याय 1 से 30 पद तक। पिछली बार जब हम 21 अध्याय में हम देख रहे थे तो आपको याद होगा कि मैंने थोड़ा सा स्मरण दिलाया था आपको और बताया था कि किस प्रकार से पौलुस अब यरूशलम वापस जाता है और यरूशलम उसके जाने की इच्छा, परमेश्वर ने उसके अंदर ये इच्छा डाली है। यरूशलम से वो बहुत प्यार करता है, उसके अंदर एक कंसर्न है, उसके अंदर एक चिंता है जगह के लिए, क्योंकि वो वहीं पर आगे बढ़ा है, परमेश्वर से बातें की हैं। सब मिशनरी यात्रा वो समाप्त करके यरूशलम वो वापस पहुंचा है। अब उसको किस रीति से अंतिम दिनों में कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु अब 22 अध्याय से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत मुख्य बात यह है कि पौलुस अपने जीवन की साक्षी को बहुत ही विस्तार के साथ देता है। जो घटना उसके जीवन में 9 अध्याय में घटित हुई है, उस घटना का, उस अनुभव का वर्णन वो 22 अध्याय में, उसके 26 अध्याय में और उसके साथ साथ पत्रियों में भी लिखते हुए वर्णन करता है। और मैंने आपको बोला था कि अच्छा है कि हम इस बात को सीखें कि हमें साक्षी किस प्रकार से देनी चाहिए, हमें गवाही किस प्रकार से देनी चाहिए और पौलुस महासभा के सामने किस प्रकार से गवाही देता है। गवाही कौन देता है? जिसने किसी बातों को आंखों से देखा है, जिसने सुना है। जब कोर्ट में आप जाते हैं अगर किसी के गवाह के, तो आपसे पूछा जाता है गुट्टा के बारे में, क्या आप उस समय वहां पर उपस्थित थे? जी हाँ मैं उपस्थित था। आपने क्या सुना था? हाँ मैंने सुना। क्या आपने देखा था? क्या देखा था? तो आपने जो सुना है, जो देखा है, आपकी उपस्थिति, उसका तो आप वर्णन करते हैं। अगर आप पहले कहते नहीं मैं मानी था, तो गवाही देने की क्या है? तो जब आपका अनुभव ही नहीं, तो आप क्या गवाही देंगे? और इसलिए बहुत जरूरी है कि मसीह जीवन में भी हम इस बात को सीखें कि हमें गवाही किस प्रकार से देनी चाहिए। जब लोगों को गवाही देने का मौका मिलता है, वो खड़े होकर प्रचार करने लगते हैं, गवाही प्रचार नहीं है। सो तीन मुख्य बातें हैं, आगे मैं वचन के अनुसार बढ़ूंगा, लेकिन तीन मुख्य बातें हैं जो गवाही में ध्यान रखते हैं। मेरा पिछला जीवन कैसा था, अतीत का जीवन कैसा था, उसका बहुत वर्णन नहीं करना, खास बात पाप में था या मैं किस रीति से चला था। और कई बार उसके पास्ट को भी हम इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, है कर तो रहे मजदूरी, लेकिन बताते हैं कभी इंजीनियर थे, वो गलत है, गलत है। जो सच्ची बात है उसको छोटे समय कहूंगा। कैसे प्रभु से संपर्क हुआ, कौन सी घटना घटी जिससे हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, अब मेरा जीवन क्या है? तो तीन बात है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, अब उसके साथ साथ अब मैं फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ूं। तो ये मेरे जीवन है, और जहां इससे हट करके हम कहीं और में जाते हैं तो हम अपनी गवाहियों को में भटक जाते हैं। और पौलुस का यही तरीका जिस पर आज हम विचार करना चाहेंगे। जब हम 22वें अध्याय में आते हैं, इसमें 30 पद है और इस 30 पद को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। मुख्य शीर्षक पौलुस का महासभा में गवाही देना, अधिकारियों के बीच में, लोगों के बीच में किस प्रकार से वो गवाही देता है। इन 30 अध्याय को पहले पद से लेकर के 21 पद तक पौलुस की साक्षी है और 22 पद से लेकर 30 पद तक पौलुस का संघर्ष है, जो उसको सामना करना पड़ा या विरोध का सामना करना है, या वो जिस प्रकार से संघर्ष का सामना करते हुए अपनी धरोहर के बारे में बताता है, किस प्रकार से क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, वो सब कुछ बताता है। और तब उसमें दूसरे बार हम देखते हैं कि उसका पौलुस का सतावनी में बचाव होता है। हम पिछली बार देख रहे थे कि किस रीति 4 बार पौलुस को इस पीरियड में, इस समय में, काल में, उन घटनाओं के मध्य में उसका बचाव हुआ है। पिछली बार हमने पहले बचाव को देखा था, आज दूसरे बचाव में हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा, तो पौलुस किस प्रकार से इस 22 अध्याय में इन सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने साक्षी को दे रहा है। अगर हम 39 पद को पढ़ते हैं, 21 अध्याय के 39 पद को, तो यहां से कुछ बातें आरंभ होती है। परंतु पौलुस ने कहा, मैं यहूदी हूं और प्रसिद्ध नगर किलकिया के तरसुस का एक नागरिक हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों को बोलने की अनुमति दे। वो अपना परिचय देता है कि मेरा जन्म कहां हुआ, मेरी नागरिकता कहां है। वो अपना परिचय देता है, पहली चीज साक्षी में वो अपना परिचय देता है, छोटा सा परिचय, बहुत सारी बातें को परिचय में नहीं दे रहा। तो इस ठीक इसी में जब हम साक्षी देते हैं, छोटा सा एक परिचय देते हैं, मेरा जन्म स्थान क्या है, मेरा पृष्ठभूमि क्या है, मैं कहां से आया हूं, किस रीति से, तो ये वर्णन करता है। तब 22 अध्याय में पहले पद से लेकर 5 पद तक हम उसके परिवर्तन के साथ साथ उसके जीवन के बारे में देखते हैं। उससे पहले उसका जीवन क्या था, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के पास आता, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को परिवर्तित करता, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसको अपने जीवन अपने आप को प्रदर्शित करता, पौलुस किस प्रकार से पहले पद से लेकर 5 पद तक अपने पुराने जीवन के बारे में बता रहा है और वो क्या संबोधन कर रहा है, भाइयों और बुजुर्गों। ठीक इसी प्रकार से प्रेरित काम उसके 7वें अध्याय में इस्तुफनस का जब वध हुआ था, जब इस्तुफनस अपनी साक्षी देते हुए सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, वो भी इसी प्रकार से संबोधित करता है, हे भाइयों और बुजुर्गों, उसने भी इसी प्रकार से संबोधन किया। पौलुस भी इसी प्रकार से संबोधन कर रहा है, कह रहा है भाई और बुजुर्गों मेरा प्रयत्न सुनो, जिसे अब मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब उन लोगों ने सुना कि ये हमसे इब्रानी में बोल रहा है तो वे और भी शांत हो गए और उसकी सुनने लगे। अब जरूर उस समय हुल्लड़ मचा होता, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको ये करो, उसको करो, आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन जैसे उसने उस भाषा का इस्तेमाल किया जो वहां के लोगों की भाषा थी, यहूदियों के बीच की भाषा थी, यहूदी की भाषा थी, लोग शांत हो गए, अरे ये तो इब्रानी है, ये तो यहूदी है, ये तो हमारी भाषा जानता है। और पहला ध्यान उसने साक्षी देते समय हमें परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं। और तब वो आगे बढ़ना, जब वो शांत हो गए तब तीसरे पद से क्या कह रहा है, मैं यहूदी हूं जो किलकिया के तरसुस में जन्मा, इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमलील के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया। मैं परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था जैसे कि आज तुम हो। और तब ये अपने साक्षी के द्वारा देते हुए कुछ बातों का वर्णन करता है। वो कहता पहले अपने प्रभु में बताता मैं यहूदी हूं, तुम सोच रहे हो ये कहां का कैसा व्यक्ति है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं तुम्हारे बीच में कल व्यक्ति हूं, तुम्हारे लोगों का हूं, मैं यहूदी हूं, मेरा जन्म कहां हुआ, किलकिया के तरसुस का नागरिक हूं, गमलील के चरणों में बैठकर। गमलील उस समय, बार बार हम गमलील के बारे में देखते चले आ रहे हैं 5वें अध्याय से, बार बार गमलील के बारे में, गमलील के चरणों में रह करके उसने 3 साल तक व्यवस्था का अध्ययन किया था। और उस समय में गमलील एक ऐसा सेवक था या एक ऐसा व्यवस्था का शिक्षक था जो पूरे स्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास था, सबसे बड़ा विद्वान वो था। और उसके साथ रह करके जो भी व्यवस्था को सीखता था वो बहुत ऊंचा माना जाता। और इसलिए कह रहा है कि मैंने ऐसी वैसी जगह नहीं, मैंने गमलील के चरणों में बैठकर उसके साथ बैठकर के व्यवस्था को सीखा है 3 साल तक, अर्थात मैं व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता हूं। जो कुछ भी मैं व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूं उसको मैं भली बात ही जानता हूं। और पौलुस की सेवा में हम इस बात को जानते हैं कि बार बार उसने शिक्षा दी। पिछली बार हम देख रहे थे कि जो 21 अध्याय में घटना घटी थी, उस समय रोमी की पत्री नहीं लिखी गई थी, उस समय गलातियों की पत्री नहीं लिखी गई थी, उस समय कलीसिया आरंभ हो रही थी। और ये कलीसिया का जो इतिहास का वर्णन है ये 30 साल के लगभग का वर्णन है। अभी लगभग 15 साल हो चुके हैं कलीसिया को स्थापित हुए, यरूशलेम की कलीसिया को स्थापित हुए। अब वो आगे बढ़, समय बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रेरित काम का जो काल है वो 30 साल के लगभग का है, जिसमें ये पूरी कलीसियाओं का वर्णन और उसकी सेवा का वर्णन दिया जा रहा है। तो वो इस बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता है किस तरीके से मैंने उसके चरणों में रहकर के व्यवस्था को जाना है, सीखा है। और तब कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा था, चाहे व्यवस्था के बारे में हो चाहे आज हो, उस समय व्यवस्था को जानता था। और इसीलिए जैसे मैंने कहा, उस समय ना तो रोमियो की पत्री लिखी गई थी ना गलतियों की पत्री लिखी थी, लेकिन पौलुस ने व्यवस्था को इसलिए जाना था। और तब वो बार बार बात को सिखा सका कि व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं है, व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहराए नहीं जाते। उसी चीज को उसने बाद में आकर
प्रकट किया है। गलातियों में, रोमियो में स्पष्ट रूप समझाया है कि अगर हम उद्धार पाते हैं तो केवल विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और वो इस बात को स्पष्ट वर्णन करता है, तब कहता है, आगे चल के कहता है चार पद में, मैंने इस पंथ को यहां तक सताया। मैंने इस पंथ को, किस पंथ की बात कर रहा, किस पंथ की? और प्रेत काम में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के लिए, इस समूह के लिए, इस समुदाय के लिए पंथ का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग जीवन सत्य मैं हूं। और इंग्लिश में जो शब्द आया वो वे शब्द आया, रास्ता, पंथ के लिए रास्ता, मार्ग। इस मार्ग के लोग, इस पंथ के लोग, इस रास्ते के लोग, इसके अनुयायी, ये नहीं, मैं इन लोगों को कह कर रहा है इस पंथ का, यहां तक कि सताया कि पुरुषों और स्त्रियों को बंद करके। तो ये कौन सा पंथ था, कौन सा मार्ग था, कौन सा रास्ता था? वो पंथ, वो रास्ता, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह का है। बिना यीशु के द्वारा उद्धार नहीं है। मेरे प्रियो, हम इस बात को बार बार जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रत्येक व्यक्ति पापी है। चंगाई के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, आश्रय कर्म के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते। इसीलिए जिस प्रभु यीशु मसीह ने भी आश्रय कर्म किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पापों के साथ व्यक्ति का रीति से व्यवहार किया। और इसलिए हम इस बात को जानते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा छुटकारा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके सामर्थ में सबसे बड़ा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। और वो कह रहा है ये पंथ, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, अर्थात जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल बार बार बताती है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इसीलिए पौलुस अब जान गया था, और इससे पहले जब तक उसने जाना था, वो कह रहा है इस पंथ के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर के अनुयायी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन लोगों को मैं सताया करता था, क्योंकि मैं व्यवस्था के लिए बहुत जोशीला था, पर मैं अभी तक उस भेद को नहीं जान पाया था, अभी तक उस भेद को नहीं जान पाता। व्यवस्था का ज्ञान तो मुझे था, व्यवस्था की रीति से मैं सब कुछ तो कर रहा था, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जान नहीं पाया था। और तब आगे चल के कहता है, कह रहा है मैंने इनको ऐसा सताया, ये सब कुछ वर्णन करता है। तो अपने जीवन के बारे में कि किस प्रकार से मैं ये लोगों को सताने था, मैंने इस बात कह, तब आगे चल करके वो अपने बारे में बताता है कि ये उसका जीवन था, जोशीला था, उत्साह से भरा था, व्यवस्था का पालन करने वाला था, सब कुछ था, लेकिन उद्धार से दूर था, सच्चे जीवन से दूर था, परमेश्वर के द्वारा पापों की क्षमा से दूर था। व्यवस्था के द्वारा वो पापों से क्षमा छुटकारा तो जाना चाह रहा था, लेकिन वो उससे दूर था, वो नहीं जान पा रहा था। और तब वो आगे चल करके वर्णन करता है कि जब मैं आगे चल के, तब अब उसके साथ क्या घटना हुई। पहले पांच पद में वो अपने जीवन में क्या कर रहा था, क्या वो था, लेकिन अब आगे चल करके अब उसके साथ क्या घटना घट गई, क्या उसको अनुभव मिल गया, कैसे उससे बातचीत हो गई। तब वो कहता छठे पद में, और ऐसा हुआ कि जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क के निकट अभी रास्ते में से होकर आकाश की से एक बड़ी ज्योति चमकी और मैं भूमि पर गिर गया और एक वाणी मुझसे पहले कहती सुनाई दी, शाउल शाउल तू मुझे क्यों सताता है। मेरे पियो, क्या शाउल प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था? शाउल तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, शाउल तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सता रहा था, लेकिन प्रभु कहता तू मुझे क्यों सता रहा है। और आज भी मेरे और आपके लिए प्रोत्साहन की बात है, जब हम ऐसे देश में हैं, ऐसे समाज में, ऐसे लोगों के बीच में हैं, जब लोग कलीसियाओं पर आक्रमण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अन्यायियों को सताते हैं किसी ना किसी से, कई तरह कारण से। हमारे भाई लोग जो गांव में सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों का अनुभव है, जिन्होंने सेवा किया है उनका तरह तरह का अनुभव है, प्रभु ने हमें भी बहुत सारे अनुभव दिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सच है कि अगर कोई यीशु मसीह के नाम से मुझे और आपको सताता है तो वो यीशु मसीह को सताता है। यदि कोई कलीसिया पर आक्रमण करता है तो प्रभु यीशु मसीह पर आक्रमण कर रहा है। और यहां तक कि कई बार हम विश्वासी होकर विश्वासी मसीह जीवन व्यतीत करते हुए ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें पीड़ा दी जा रही है, हमें दुख दी जा रही है, प्रभु यीशु मसीह इसको देखता है, प्रभु यीशु मसीह इसमें शोकित होता है। और उसने शाऊल से कहा, जब शाऊल कहता है आगे चल करके हम देखते हैं कि किस रीति शाऊल का रिस्पॉन्स क्या है, आठवें पद में मैंने उत्तर दिया, शाऊल कह रहा है मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है, प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। अद्भुत लगता है कि जब पौलुस ने यह आवाज को सुना, क्यों उसके मस्तिष्क में, क्यों उसके विचार में, क्यों उसके मन में, क्यों उसके ध्यान में यह आ गया, यह प्रभु की वाणी है, परमेश्वर का आत्मा उसको नियंत्रित कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा से व्यवहार कर रहा है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उसके जीवन को, उसके मन को, उसके हृदय को संचालित करने लगता है, नियंत्रित करने लगता है। और वो समझ गया कि जो बोलने वाला है एक अद्भुत वाणी है, एक अद्भुत आवाज, और उसी के मुंह से ये निकला, प्रभु तू कौन है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया है, मैं यीशु नासरी हूं, मैं यीशु, यीशु मैं उद्धार करता हूं, मैं नासरत का निवासी हूं, मैं इसलिए संसार में आया ताकि मेरे द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त कर सके, लोग जीवन को प्राप्त कर सके, मैं वो हूं। तू मुझे सता रहा है, जो मेरे साथ थे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे साथ थे उन्होंने ज्योति अवश्य देखी परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसकी वाणी समझी। तब मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं। अब परमेश्वर ने उससे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करी। क्या आपको याद है कि अभी प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कब बात करी? अगर आप सेवा में आ गए, आज जो भाई लोग एक समर्पण के साथ एक अभिषेक के लिए तैयार है, क्या आपको मालूम है कि आपने सेवा में आने समय परमेश्वर ने कब आपसे बात करी? अरे आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है चलो चलो आओ सेवा कर लो, आओ सेवा, अच्छा कुछ नहीं कर पाते आ चलो ये कर लो, अच्छा कुछ नहीं कर पाते अरे पढ़ना छोड़ दो ये कर लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूं, यहाँ पुलपिट में मैं खड़ा हूं, मैं परमेश्वर के बड़े नम्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रभु की उन वाणी को जो वचनों के द्वारा, सेव के द्वारा मेरे कानों पड़ी, आज भी मैं स्मरण करता हूं। जब मैं एचएल में था कैसे परमेश्वर ने मुझसे बार बार बात, कल परसों में किसी के साथ बांट रहा था, 4 साल तक परमेश्वर निरंतर मुझसे बात करता था, 4 साल वचन के द्वारा, सेवकों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, तरह तरह से, और इतना व्याकुलता बढ़ती गई कि सेवा। लेकिन जब सेवा में आ गया, उससे सेवा से आने से पहले मैं स्मरण करता हूं, कई लोग जानते होंगे डॉक्टर चांडा पिला का नाम जानते होंगे, वो प्रभु के एक बहुत अच्छे सेवक रहे और यूएसआई के उस समय चलो सेक्रेटरी थे, और नागपुर में एक मीटिंग थी 76 में और मुझे वहां जाने का मौका मिला। और जब परमेश्वर के दास अंतिम दिन में प्रचार कर रहे थे, एमएलए हॉस्टल का पूरा बड़ा मैदान था, उन्होंने आखिरी दिन यौना उसका 12 अध्याय और उसके 24 पद से प्रचार करना आरंभ किया, जब तक एक गेहूं का दाना गिरकर भूमि पे नहीं मर जाता वह अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत फलवंत होता है। और तब उसके बाद उसने कहा कि जो कोई मेरे सेवक करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा, उसका सम्मान देगा। और उस पैसे से उन्होंने संदेश दिया, प्रचार किया था, मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा मेरे दिमाग में बना रहता। और जब उस वचन को सुना, उन्होंने आखिरी में एक बात कही, जितने लोगों को अपने प्रांत के लिए, अपनी भाषा के लिए बोझ है, वो इस पंडाल के अंदर रहे, बाकी सब पंडाल से बाहर निकल जाए। और वो दिन था जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया था, आज भी बार बार याद आता है प्रभु की स्पष्ट वाणी वचन के द्वारा, कितने अनुभव हैं जो प्रभु ने दिए। मेरे प्रियो, हम सेवा में क्यों इधर उधर भटकते हैं, क्यों वो जीवन व्यतीत नहीं करने पाते, क्योंकि शायद परमेश्वर की वाणी जो स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए हमने नहीं सुनाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी। और मेरे और आपको सोचना है, जानना है, समझना है इस बात को। और पौलुस ने स्पष्ट रूप से इस बात को सुना था, परमेश्वर ने उससे बातें की थी, वो कहता तब कहता प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा, पहली आज्ञा, परमेश्वर कुछ नहीं कहा उससे, कहा उठकर दमिश्क में जा और वहां वो सब जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है बता दिया जाएगा। परमेश्वर हमारा परमेश्वर योजना वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से सनातन की योजना बना करके, चाहे वो किसी जीवन के लिए हो, चाहे किसी सेवा के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, वो बना कर रखता है। और अगर वो बुलाता भी है, अगर वो बुलाहट देता है, तो बुलाहटने के साथ साथ वो तैयार भी करता है। अगर तैयार करता है तो वो उपलब्ध भी कराता है, उनको तैयार भी करता है, उनके लिए उपलब्ध भी। और यहां पर प्रभु कह रहा तुझे उठकर जाना है। पौलुस कहता प्रभु जी यही रास्ते बता दीजिए मुझे, तब तो मैं सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए, तब तो मैं जाऊंगा आगे। कहां कह रहा भेज रहे, अभी तू मुझसे बात कर रहा है, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, और तू कह रहा है कि उठकर वहां चला जा और तब उसके बाद तेरे गिर। और तब लिखा हुआ 11 पद में, इसलिए उस ज्योति के तेज कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे साथियों ने हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क पहुंचाया। वो अपने उस जीवन के अनुभव को बता रहा है जो उसके साथ घटित हुआ है। उसने स्पष्ट प्रभु की वाणी को सुना है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है रोमियों उसके 10:17 में कि और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। पहला कदम विश्वास का परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा, चाहे शायद आप किसी सेवक के द्वारा सुन रहे हैं जो प्रचार कर रहा हो, शायद आप बाइबल पढ़ रहे हैं उसके द्वारा सुन रहे हैं, या कोई व्यक्तिगत हिसाब से बातचीत कर रहा हो सकता है, लेकिन वचन का जीवन में कार्य करना अनिवार्य है। घटनाएं आप भूल जाएंगे, या वो घटनाएं फिर से दोबारा ऐसी घटना घट जाएंगी। बीमार थे, बिस्तर पड़े थे, प्रभु मुझे बचा ले, एक पास्टर आया, उसने प्रार्थना करी, मैं बच गया, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। ये वर्ष वचन कहते हैं, कल बीमारी फिर आएगी। लेकिन प्रभु की आवाज को क्या सुना है, प्रभु ने आपसे क्या बातें की। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आज भी अपने दोष में, क्या परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है? क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है? क्या परमेश्वर की आवाज को आज भी सुनने पा रहे हैं? एक विश्वासी हो गए, बपतिस्मा ले लिया, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वर्तमान में आपके साथ परमेश्वर के वचन का क्या संबंध? और मेरे प्रियो, एक विश्वासी, सच्चे विश्वासी का जीवन उसके साथ परमेश्वर के वचन का संबंध रहेगा। वो लोगों की बात को नहीं, परमेश्वर के वचन को देखा, वचन क्या कहता है। आज हम बहुत जल्दी लोग भरमाए जाते हैं लोगों की बात सुनने के कारण। वचन क्या कर रहा, वचन में जाइए। हमारे सिद्धांत, हमारे तरीके, हमारे कदम, हमारी आज्ञाएं, हमारे सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार। पौलुस के जीवन का आदम प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनकर हुआ था। व्यवस्था को जानता था, बहुत ज्ञानवान था, सब कुछ कर रहा था, जोश से भरा हुआ था। वो सोचता था रोज जो मसीह को सताता था, बंदगी में डालता था, वो सोचता मैं बहुत अच्छा काम करूं, व्यवस्था को पूरा करूं। और कई बार लोग इसी तरह से घमंड में भरे रहते, मैं बहुत अच्छा करूं, नहीं। लेकिन पौलुस को टूटना, पौलुस को झुकना पड़ा, पौलुस को मानना पड़ा, और आंखें बंद हो गई, आंखें बंद। तो ये सब कुछ, अब तब आगे चल करके हम देखते हैं, तब उसके बाद क्या हुआ। 12 पद से लेकर के अब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसको ठहराया था। किस रीति से लिखा हुआ है 12 पद से 16 पद तक, हनन्याह नामक एक व्यक्ति, थोड़ा देखिए। तब हनन्याह नामक एक व्यक्ति मनुष्य ने, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त था, व्यवस्था के अनुसार भक्त था, ये व्यक्ति भी व्यवस्था के अनुसार भक्त है, व्यवस्था को पालन करता है, व्यवस्था को जानता है, हनन्याह इसका नाम है, व्यवस्था को जाना, उसके साथ साथ भक्त, ना केवल वो लेकिन उसके साथ साथ लिखा हुआ है वहां रहने वालों में यहूदियों में प्रतिष्ठित था, यहूदी लोग उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था का आदर करता है, व्यवस्था को मानता है, व्यवस्था को जानता है, इसलिए उसका आदर करते हैं। मेरे पास आकर खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल अपनी दृष्टि प्राप्त कर। उसी क्षण मैंने देखा और उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए नियुक्त किया, ये उद्देश्य है, क्यों नहीं किया, क्यों तुझे बचाया है, क्यों तेरा उद्धार किया है, क्यों तुझे वाणी सुनाई दी है, ये उद्देश्य है, क्यों मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु उद्धार करता करके उद्धार को प्राप्त किया है। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जीवन पाया, क्यों किया है। पौलुस के सामने यहां था और मेरे प्रियो मुझे और आपको भी मानो चाहिए क्यों प्रभु ने अपने उस बहुमूल्य लहू को क्रूस पर बहाया मेरे और आपके लिए, सिर पर कांटों का ताज सहा, हाथों पे वो कीले सही, पांव में कीले सही, भारत सहा, निंदा सही, अपमान सहा, वो क्रूस में वो निंदा सही क्यों सहा, क्यों मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई, क्यों मेरे और आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। एक उद्देश्य है, क्या मैंने और आपने उस उद्देश्य को जाना है? यदि मेरे और आपके जीवन में अभी तक वो देश स्पष्ट नहीं है, मेरा और आपका जीवन व्यर्थ है। मुझे और आपको सचेत होना है, हम संसार के लोगों में केवल एक नाम लेके क्रिश्चियन या मसीह लेके चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन मेरे और आपके जीवन में हम जैसे दुनिया घूम रही है वैसे दुनिया घूम में चल रहे हैं, हमारे अंदर अलगाव नहीं है। हम संसार के साथ, संसार बहुत दौड़ा चले जा रहा, उसी में दौड़े चले जा रहे, समस्या गिर में, पाप में गिर में, झूठ में गिरे, छल में गिरे, घूस में गिरे, सब चीज में गिरे हुए। उद्देश्य क्या है? क्या आपने इस बात को गंभीरता से सोचा है अपने जीवन के लिए? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया? क्यों आप कलीसिया में आए हैं? क्यों कलीसिया में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है? भाई बोले थे कि प्रार्थना करते, सच है लोगों के जीवन में कलीसिया के अर्थ को समझना है। जब लोग कलीसिया के अर्थ को समझ लेते हैं तो कलीसिया का सम्मान करते हैं, कलीसिया के नियमों का सम्मान करते हैं, तब उनके जीवन में फर्क होता है। यहां पर वो कहता है, यह कह रहा है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए नियुक्त किया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा तेरे और मेरे लिए क्या है? पहली बात मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या चाहता है वो मुझसे और आपसे? बस ठीक है, संसार जैसा सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, हम सुख है, बहुत बहाने हो जाते हैं, लेकिन कितना अधिक हमारे पास त्याग करने के लिए हम तैयार हैं? कितना अधिक अपने जीवन को अनुशासित करने तैयार हैं? कितना अधिक अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम के लिए समर्पित करने तैयार हैं? वो कह रहा है तू परमेश्वर की इच्छा को जाने, और परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो लेगा वो मेरे शिष्य तक के लायक नहीं है। स्पष्ट परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे और आपको उसका क्रूस उठा करके उसके पीछे हो लेना है। ये स्पष्ट इच्छा है परमेश्वर की। वो कह रहा है उसके बच्चों को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुख से बातें से। कौन धर्मी? वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान किया गया, जिसने क्रूस पर कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपने हाथों को फैलाया। मेरे प्रियो, उस धर्मी को देखे, यीशु की ओर ताकते रहो, यीशु की ओर ताकते रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उस धर्मी को देखें और उसके मुख की बातों को सुने। ये प्रभु यीशु से सुन आदर। अगर आप यशायाह उसके 50 अध्याय के 4 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी यीशु मसीह के लिखा है, वो भोर को उठकर परमेश्वर के चरण में बैठ करके उसकी आवाज को सुनता था। वो ऐसा शिष्य था जो अपने गुरु की आवाज को सुनने के लिए सुबह सुबह उसके चरणों में बैठता था। यशायाह 50:4, मेरे प्रियो, उसकी मुख की आवाज को सुने। हम सुबह सुबह उठ के किसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहते हैं? आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई संसार में, कितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के लिए लागित रहते हैं? हम इतने अधिक व्यस्त हैं, काम है, नौकरी अच्छी बात है, माफ कीजिए, क्षमा करिए, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर के अनुग्रह में आज जो सेवा करने पा रहा हूं। मैं कल भाइयों से बात कर रहा था और बात करते बोला, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को पाया, 9 फरवरी 1972, दिन शुक्रवार शाम को 6 बजे, मुझे वो स्थान याद है, वो समय याद है, वो वचन याद है, वो घटना याद है, और मैं बार बार उसको दोहराता हूं, और जब पॉल उसकी साक्षी को देता हूं तो मेरे को और अधिक प्रोत्साहन मिलता। उस दिन से लेकर के एक चीज सीखी, एचएल में काम करता था, शिफ्ट ड्यूटीज जानी होती थी, कभी सुबह, कभी रात में, कभी दोपहर में। सुबह 6 बजे ड्यूटी पहुंचने के लिए 5:30 बजे 5:15 बजे निकलना होता था, लेकिन उससे पहले उठकर नहाना धोना, चाहे मॉर्निंग में जाना हो, कम से कम 40 मिनट मेरा बैठ करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का नियम बना हुआ था, और उसी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। उस समय था, अभी भी प्रयत्नशील रहता हूं कि मैं उसको करता रहूं जब तक मेरी अंतिम आंख बंद ना हो जाए। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी लालसा है। मेरे प्रियो, सच है, उसकी आवाज को सुनना, उसके वचन को जाना, उसके वचन को सुनना, कितनी सुंदर बात है। हमारे पास ज्ञान तो बहुत रहता है, किसी से बैठिए बातचीत करी, दुनिया भर की बातें करी, लेकिन उनके बात के अंदर कोई भी निर्णय में, कोई चीज में परमेश्वर के वचन का कोई केंद्र नहीं। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपने तरीके, अपनी बातें ये रहती हैं, लेकिन क्या वचन तो उसमें केंद्रित है यह हमें समझना है। कह रहा है उसके मुख की आवाज। मेरे प्रिय विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु के सेवक हैं, सेवा में कितना अधिक। कल भाइयों से बात करते हुए बोल रहा था, लूका उसके पहला अध्याय में दूसरे पद में लिखा, हम जो वचन के सेवक, अगर एक सेवक सेवक करना चाहता है, एल्डर्स सेवा करना चाहते, कोई भी प्राचीन कोई भी है, तो सबसे पहली गुण है कि उसको एक अच्छा परमेश्वर के वचन का सेवक होना है। कह रहा उसकी बातों को सुने, क्योंकि तूने उसके लिए सब मनुष्य को के पद्रा पद, क्योंकि तू उसके लिए सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी है सुनी है। किसका गवाह होगा? मैंने आरंभ कहां से करा था? एक कचहरी से। आप जाते हैं गवाह के लिए, जज आपसे पूछता है क्या आप थे वहां पर, जीते, क्या आपने देखा था, हाँ देखा था, क्या आपने सुना था, हाँ सुना था। पौलुस से क्या कहा जा रहा है? जो बातें तूने देखी है, तूने सुनी है, उसका तू गवाह बन जा। मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपसे क्या बातें कही, प्रभु ने आपसे क्या बातें सुनाई आपको, उसके गवाह बनना है मुझे और आपको। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर इच्छा है। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, बहुत बहुत कठिनाइयां आती है, कई बार हमारे मन के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार हम जीवन चला नहीं सकते, बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या है, तब आगे चल के वो क्या कहता है, आप क्यों देर कर रहा है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उठ बपतिस्मा ले। मेरे प्रियो, हनन्याह उसको बपतिस्मा दिया, उसके बाद पौलुस 3 साल के लिए कहीं और चला गया, तब बाद में 3 साल बाद फिर यरूशलम में आता है, तब यरूशलम की कलीसिया में मिलता है, उठ बपतिस्मा। यदि तूने उसकी आवाज को सुना है, यदि तूने उस पर विश्वास किया है, यदि तूने, अब वो व्यवस्था नहीं, लेकिन तुझे उस आज्ञा का पालन करना है जो बपतिस्मा की, हाँ ले लेंगे बपतिस्मा। अगर प्रभु पर आपने विश्वास किया है, आप कभी भी 100% पूरी रीति से आप सिद्ध नहीं बन सकते, मैं सिद्ध नहीं बनता, हम सरदूत हैं। विश्वास, विश्वास के बाद बपतिस्मा, उठ बपतिस्मा ले। हाँ अभी भी पौलुस के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होना था, एकदम से जादू नहीं हो गया था जीवन, अभी प्रभु उसके जीवन में दिन पर दिन उसके साथ कार्य कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके साथ कार्य कर रहा था, उसको सीखना था, सिखा रहा था, प्रभु आगे बढ़ाता चला जा रहा था, बहुत कुछ था उसके साथ जो अपने पत्र में वर्णन करता है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपने विश्वास किया है, विश्वास सच्चा होना है, वचन के अनुसार होना है, पापों की क्षमा का अनुभव होना है, पापों की क्षमा पर आंख होना है, और उसके साथ साथ आपको विश्वास के बपतिस्मा लेना है। कई बार सोचते ले लेंगे, अरे 6 महीने बाद ले लेंगे, आपको मालूम 6 महीने तक आप जिंदा रहेंगे, अगर आप उठा ली जाए तो क्या करेंगे, ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। सचेत रहिए, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें वचन को सुनना है। खोजे जा रहा था, फिलिपुस आया, खोजे पढ़ रहा था, फिलिपुस पहुंच गया, फिलिपुस से पूछा, प्रेरित काम उसके 8वें अध्याय में, फिलिपुस ने पूछा क्या तू समझ रहा है, खोजने का जब तक कोई मुझे ना समझाए तो कैसे मैं समझूंगा, फिलिपुस ने उसको समझाया, उसने विश्वास कर लिया, तब उसने कहा मैं समझ गया हूं, अब सुसमाचार में समझ गया, प्रभु यीशु मसीह में समझ गया, उसने यशायाह 53 समझा दिया। तब उसके बाद उसने पाप पूछा, अब मुझे विश्वास, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या दे रहा है, जल यहां पर है, और रास्ते में रुका वो, फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया, फिलिपुस को प्रभु उठा लिया। खोजे कहता अगले साल फिर मैं मंदिर में आऊंगा, तब फिलिपुस मुझे मिलना, तब मुझे बपतिस्मा दे देना। विश्वास क्या, अगर आप जानते हैं यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, आपको विलंब नहीं करना। मैं और आप इस दुनिया में जब तक हैं पृथ्वी पे, हमें पाप से संघर्ष का नाम करते रहेंगे, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम संभाले जाते हैं, उसकी कलीसिया के द्वारा, उसके विश्वास द्वारा, उसके लोगों के द्वारा हम संभाले जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, और अंश अंश करके हम उसके रूप में, स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। 17 पद से तब उसके बाद आगे चल करके ये सब कुछ हुआ। अब वो कुछ और आगे अपने बारे में वर्णन करता है, कुछ वर्णन करने के बाद तब कह रहा है, फिर ऐसा हुआ कि मैं यरूशलम में वापस आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो मैं बेशुद्ध हो गया दोबारा, और मैंने कहते सुना, शीघ्र तक कर यरूशलम से तुरंत निकल जा, क्योंकि वे तेरे विषय में तेरे गवाही नहीं मानेंगे। मैंने कहा, प्रभु वे तो स्वयं जानते हैं कि मैं एक आराधनालय से दूसरे आराधनालय में उन्हें जो तुझ पर विश्वास करते हैं बंदी बनाता और पीटता था। अब तेरे गवाह स्तुफनस के उसमें जो गवाही दे रहा था उसमें भी वो शामिल था। क्या उसके क्या कर रहा था? वो वस्त्रों की देखभाल कर रहा था। लिखा है, हत्या में सहमित था हत्या करने वालों के वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। और उसने मुझसे कहा, जा क्योंकि मैं तुझे दूर दूर तक गैर यहूदियों के पास भेजूंगा, अन्य जातियों के पास मैं तुझे भेजूंगा। पौलुस जा। ठीक है, तू यरूशलम आया है, यरूशलम तो प्रेम करता है, यरूशलम तो, लेकिन यरूशलम तेरा स्थान नहीं है। और इसीलिए पौलुस को परमेश्वर ने यरूशलम से बाहर भेजा। अब थोड़े दिन बाद यरूशलम से फिर वो केंद्र जो था सुसमाचार का केंद्र था, हमने पिछले दो में दिखाया, वो वहां से शिफ्ट होके अंताकिया में आ गया, अंताकिया मुख्य केंद्र बन गया। और तीनों मिशनरी यात्रा जाते थे अंताकिया वापस आते, जाते थे अंताकिया वापस। जब तीसरी मिशनरी यात्रा खत्म हो गई तब ये यरूशलम वापस आता है। और उसके बाद फिर यरूशलम में संघर्ष का सामना करता है और फिर वो बंदीगृह में जाता है और अंत में वो 2 साल तक रोम के बंदीगृह में रहता है, जहां पर जब हम आखिरी अध्याय में आएंगे तब देखेंगे और वहां पर किस प्रकार से पत्रियों को लिखता है, जो आज मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। यहां पर क्या कह रहा आगे चल करके 22 पद से लेकर, स्पष्ट रूप से उसने बता दिया तुझे यही करना है। ऊंची आवाज से चिल्ला, अब लोग उसके बारे में चिल्लाने लगे, अब विद्रोह हो गया और लोग उसके विरोध में होकर के अब उसको मारना चाहते थे, उस पर आक्रमण करना चाहते, हानि पहुंचे, उस पर दोष लगा। 4 मुख्य दोष थे जो पौलुस पर बार बार यहूदी लोग लगाते, चाहे वो यहूदी महायाजक हो, चाहे यहूदी के शासक हो, चाहे यहूदी संत प्रजा हो। बाना पहली बात वो ही लगाते थे, ये इसराइल के लोगों को क्या करता है, उनको उनके प्रति विश्वासघाती है, उनके प्रति विश्वासघाती है, निष्ठाहीन है, उनका सम्मान नहीं करता इसराइल के लोग। पहली बात वो इसराइल के लोगों का सम्मान नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि इसराइल के लोग व्यवस्था मानते हैं बेकार है। ऐसा नहीं था, वो कभी भी इसराइल के लोगों के बारे में भी ऐसा नहीं था कि वो किसी भी प्रकार से निष्ठाहीन रहा या विश्वासघाती रहा, पर ये उनका दोष था। दूसरा दोष पौलुस के लिए कि परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति निष्ठाहीन है, विश्वासघाती है, कि परमेश्वर की व्यवस्था को वो, पिछली बार भी हम देख रहे थे, क्यों कहता है कि तुम व्यवस्था नहीं मानी चाहिए, उसने कभी भी ये नहीं कहता व्यवस्था मत मानो। और इसीलिए उसने कुछ प्रैक्टिकल काम में वो शामिल हुआ था, पिछले अध्याय में हम देख चुके थे। लेकिन वो ये कहता था कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, वो ये कहता था व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं है, व्यवस्था द्वारा हम धर्मी ठहराए नहीं जाते। प्रभु परमेश्वर की योजना में आप प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, उस पर विश्वास करने द्वारा हमारा उद्धार है, छुटकारा है, और उसमें होकर हम धर्मी बनाए। अब हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह, हमारी धार्मिकता व्यवस्था के कर्मों में नहीं छुपी है, कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराते, अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बार बार इस बात को शिक्षा देता है। लेकिन लोग तोड़ मोड़ उनके इस बात को रखते थे, लोग भ्रमित करते थे, और यह होता है, आज भी होता है। तीसरी बात कहते कि पौलुस परमेश्वर के मंदिर के प्रति विश्वासघाती है, निष्ठाहीन नहीं, वो मंदिर में तो बार बार जाकर प्रचार करता था, मंदिर के प्रति विश्वासघाती है, वो कभी भी उसने मंदिर का अपमान नहीं करा, मंदिर का सम्मान किया। और चौथी बात ये थी कि ये अन्य जातियों को मंदिर में लाता है, जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से आ गए हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, वे उनको वो मंदिर में लेकर आता। ये 4 दोष बार बार उसके ऊपर लगाए जा रहे थे, और जहां कहीं भी बात होती थी इसी बात पे लेकर के उस पर विरोध होता था, और कई बार लोग उसको जानते थे। अब यहां पर कुछ इसी तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन क्या वो चिल्ला रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, धूल झाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्रोधित हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ हुआ। लिखा 24 पद, तो सेनापति ने उसे किले में ले जाने को कहा और आदेश दिया कि कोड़े लगाकर जांच पड़ताल की जाए, जिससे कि उसके विरोध में लोगों के चिल्लाने के कारण मुझे मालूम हो। जब उन्होंने उसे चमड़े के बंधनों में बांधा तो पौलुस ने सूबेदार से जो पास ही खड़ा था कहा, क्या कहा, क्या यह उचित है कि एक रोमी मनुष्य को कोड़े मारो और वो भी बिना दोषी ठहराए। ये हमेशा बिना न्याय के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। अभी तक उसके हाकिम ने कोई उसको बातचीत करके उसको दोषी नहीं ठहराया, लेकिन लोगों ने पकड़ा है, लोग उस पर दोष लगा रहे हैं और लोग दोष लगाकर उसको कोड़े मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब पौलुस कहता है अरे तुम रोमी के साथ ऐसे कर रहे हो, रोमी के साथ ऐसे। और पौलुस बहुत बुद्धिमान था, पौलुस ने और कहीं झूठ नहीं बोला उसने, लेकिन सच्ची बात। और तब पौलुस जब वो कहते तो लोग चौंक जाते, तब वो कहता है क्या ये उचित है कि एक रोमी मनुष्य को कोड़े मारे, कोड़े मारो और वो भी बिना दोषी ठहराए। तुमने अभी तक उसके पर कोई दोष नहीं ठहराया है, कोई हाकिम ने, कोई शासक ने, कोई किसी ने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को प्लातुस के पास भेजा गया, प्लातुस के पास, ताकि प्लातुस को देखे, परखे और उसका न्याय करे। जब तक वो किसी हाकिम के पास, शासक के पास नहीं आता था और वो उसको दोष नहीं ठहराते, लोग दोष नहीं कर सकते थे, और ये नियम था। और अगर नियम के विरोध में कोई जाता था तो उनको भी सजा मिलती थी, उनको सजा मिलती। अब जब लोगों को मालूम चलो तो लोग डर गए उनके। लेकिन पौलुस समझदार था किस समय कैसे करना है, किस समय किस प्रकार से समय का उपयोग करना है। और मेरे पियो तब यह होगा, जब सूबेदार ने सुना तो उसने सेनापति के पास आकर कहा तू क्या करने पर है, ये तो रोमी मनुष्य है। सेनापति ने आकर उससे कहा, पूछा मुझे बता क्या तू रोमी है, उसने कहा हां। तब सेनापति ने कहा अरे मैंने तो नागरिकता पैसे देकर, रुपए देकर ली है। पौलुस ने कहा परंतु मैं तो जन्म से रोमी हूं, मेरे प्रियो रोमी राज में उसका जन्म हुआ था। और तब ये कहने, तब ये जब हुआ तब यहां पर उसको छुड़ाया था, ये बचाव है, ये दूसरा बचाव। पौलुस किस प्रकार से अपनी बुद्धिमानता से यहां पर जब साक्षी दे रहा है उसका बचाव कर, मेरे प्रियो कई बार अभी तो समय बिल्कुल बदल गया, बहुत बदल गया, अब शायद इतना नहीं है, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु के अनुग्रह के लिए। प्रभु ने बड़ा अच्छा समय में हमें जीना सिखाया। जब हम गांव में जाते थे, सड़क पे जाते थे, चौराहे पे जाते थे, शायद बारामंकिया कोई चौराहे नहीं था, ये चिन्हट का चौराहा, कोई भी ऐसा चौराहा जहां पर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार ना किया, खंजड़ी बजाना, एक जन साथ में भाई राजकुमार साथ रहते थे हमेशा, या भाई विजय जो मेरे साथ, वो दो ही भाई साथ खंजरी बजाया, लोग भीड़ लगाते थे और सुसमाचार प्रचार किया, जरूर विरोध का भी सामना करना सब। लेकिन कितना अधिक बाराबंकी शायद कोई गांव बचा होगा, कोई स्कूल बचा होगा, लिस्ट बना रखी थी और लिस्ट लिख कर रखी थी। और अच्छा आज यहाँ पर बाजार लगता है, मंगल को यहाँ लगता है, सोमवार को लगता है, बुध को यहाँ लगता है, और बाजार में प्रभु का धन्यवाद वो आनंद का समय मेरे साथ, बहुत भाई लोगों ने मेरे साथ दिया, ओएम ने साथ दिया, ओएम के भाई लोग मेरे साथ थे, पर वो समय अलग था, अब समय शायद नहीं है। यहाँ दो तीन साल तक यहाँ पर भी करा गया, हमारे भाई लोगों ने जो पहले यहाँ पर थे उन लोगों ने पूरे एरिया में कितने न्यू टेस्टमेंट, कितना साहित्य बांटा गया, किताब बनाई, क्रिसमस पे, ईस्टर पे वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत करते रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये पौलुस का एक तरीका था, पौलुस बड़े हियाब के साथ साक्षी, आज शायद समय बदल गया लेकिन संदेश नहीं बदला, संदेश नहीं बदला, तरीका बदलता है। तीन चीजें हैं जो एम से मैं अक्सर बोलता हूं, मैसेज, मेथड, मोटिव। मैसेज कभी नहीं बदलता, मेथड बदलता जाता है। जब इस तरह से प्रचार बंद हो गया तो परमेश्वर ने कैंपस क्रूस को खड़ा किया, और कैंपस क्रूस ने एक ही गांव में कितने कितने पिक्चर के द्वारा, तस्वीर के द्वारा, जीसस फिल्म के द्वारा कितने संदेश लोगों के गांव में पहुंचा, कितना जगह परमेश्वर ने सब। लेकिन फिर बाद में उसका विरोध हुआ तो मैथड बदला। आज YouTube के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से कितना संदेश लोगों के पास जा रहा है। हाँ उसमें सावधान भी रहना, कुछ गलत भी सचेत भी रहना, हमें परखना भी, लेकिन मोटिव क्या है, क्या मोटिव सचमुच सच्चाई के साथ परमेश्वर के लिए आत्मा को जीतना है या अपना फायदा उठाना, अपने राज को बनाना है, अपने किंगडम की स्थापना करना, अपने चारों लोगों को इकट्ठा करना है, मोटिव क्या है। मैसेज कभी नहीं बदलेगा, मेथड बदलते जाएंगे लेकिन मोटिव हमारा क्लियर होना चाहिए, परमेश्वर हमारे मोटिव को। और मेरे पियो पौलुस का मोटिव साफ, पौलुस का मोटिव था, पौलुस का मैसेज स्पष्ट था, स्पष्ट था, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, बिना उसके द्वारा कोई और छुटकारा नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह केवल कपड़ा रोटी मकान देने वाला नहीं है, हाँ वो करता है, हमें भूखा नहीं रहने देता, हमारी सुधि लेता है, हमारी प्रार्थना के उत्तर में हमें बिना हमारी चंगाई देता है, हमें भोजन देता है, सब कुछ करता है, लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु हमारी आध्यात्मिक की चिंता करता है, आत्मिक जीवन की चिंता करता है, स्वर्ग के राज की बातों की चिंता करता है। वो मेरा और आपका मोटिव होना चाहिए, मेरे और आपके जीवन का मोटिव होना। मैं किसी भी प्रकार से स्वर्ग के राज से कम ना हो पाऊं, सो प्रभु सहायता करें। अंत में विचार के लिए तीन बातें, परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, आपने उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अब आपके जीवन परमेश्वर का कौन सा निर्देश है आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के जीवन, क्या निर्देश है, क्या आज्ञा है? पॉलिसी का उठ तुझे बता दिया, क्या प्रभु की सुनने के लिए तैयार है? अगर आप प्रभु की सुनने के लिए तैयार है प्रभु आपको बताएगा। काश प्रभु मेरे और आपके कानों को, ताकि हम उसको सुन सकें, उसकी वो हमारी आंखों खोले ताकि हम उसको देख सकें और उसकी महिमा प्रकट कर सकें। आइए हम प्रार्थना।